पल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
शांति। आज हमारी भट्टी का चौथा दिन है। अभी हमारे बीच में आप सब देख रहे हैं, कौन कौन कविता दीदी को नहीं जानता वो हाथ उठा। अच्छा, थोड़े हैं ना, वो 10%, बाकी तो आपके ही जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, आगरा सब जोन के। शीला दीदी के साथ साथ मददगार हैं शीला दीदी, कविता दीदी और अश्विना दीदी, तीनों मिलकर के आगरा सब जोन को संभाल रहे हैं। हम बाहर आते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमें औरों की क्लासें मिल जाती हैं। हमारी अपनी दीदियां भी कितनी टैलेंटेड हैं और उनका क्या यज्ञ के अंदर स्टेटस है। कई बार कोई कोई भाई बहन अनभिज्ञ भी रह जाता है इस चीज से, इसलिए कविता दीदी का एक विशेष स्थान है मधुबन यज्ञ के अंदर भी। यज्ञ के बड़े आपको बुलाते रहते हैं बीच बीच में सेवाओं के लिए, पांडव भवन में भी आप संभालते हैं, जैसे अभी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भट्टी को, तो ऐसे कविता दीदी भी बीच बीच में आते हैं 15-15 दिन के लिए। नीचे शांति वन, मानसरोवर, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, सब जगह। और को इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि पिछले 1.5-2 साल से हम दोनों की लगभग इकट्ठी सी ड्यूटी आ जाती है। अभी ये नीचे थे, कुमारों की भट्टी को देख रहे थे, हम ऊपर थे तो ये भट्टियों की कोऑर्डिनेशन देख रहे थे, क्योंकि जो बेहद में रहते हैं अपना समय, संकल्प, एनर्जी, तन मन धन, मन बुद्धि सब कुछ बाबा के लिए, बाबा की सेवा के लिए, सिर्फ सेंटर का ही नहीं, सिर्फ अपने जोन का ही नहीं, लेकिन बेहद में पूरा विश्व, पूरा यज्ञ हमारा अपना है। ऐसी फीलिंग के साथ कविता दीदी हम सबके साथ हैं। आप 1974 से ज्ञान में हैं और 1979 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1980 से आप भरतपुर राजस्थान में रह करके अपनी बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। उससे पहले आपने आगरा और गुजरात में भी कई जगह अपनी सेवाएं दी हैं और आपकी देखरेख में लगभग सेवा केंद्र उप सेवा केंद्र 20 के करीब हैं और लगभग 300 के करीब गीता पाठशालाएं हैं जो आपकी छतर छाया में चल रही हैं। आप रिलीजियस विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। अभी साथ रहते हुए जो हमने देखा दीदी में, तो उनकी पर्सनैलिटी के अनुकूल कुछ लाइनें लिखी हैं। बच्चे छोड़ हम पर सब कुछ, बस तुम्हें मेरा बनना होगा। कर दूंगा मैं सब कुछ नक्की, लेकिन तुम्हें समर्पण करना होगा। रात भर का मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो बाबा पर ऐसा दृढ़ निश्चय और सब कुछ बाबा पर छोड़ करके निश्चिंत रहना हर परिस्थिति में, ये भी आपसे सीखने की चीज है। तो ऐसी महान हस्ती हम सबके बीच में है, इसलिए एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका आज का टॉपिक है संगम युग का खजाना, समय और संकल्प। बाकी खजानों को तो हम संभालते हैं ना, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगम के खजाने हैं। इनको हमने कैसे संभालना है, कैसे बचाना है, कैसे खर्च करना है, क्या करना है, वो अभी हम सुनेंगे कविता दीदी।
ओम शांति।
ओम शांति।
आवाज।
ओम शांति। आप सबके फोटो आ गए हैं और वो मैं और रॉबिन बैंक पीछे बैठते हैं, जिसके रह गए चुपचाप से उठ के ले लें, ताकि अगर किसी और को लेना है तो वो हमें 1 बजे से पहले पहले सूचना देनी पड़ेगी। तो वो भी नए जो लेना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिखाया था, वो भी पीछे लिखा सकते हैं, ताकि हम उस फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में 1 बजे से पहले सूचना दे सकें। कल थोड़ा पैसों का कुछ गड़बड़ हुआ था, क्योंकि मैंने वो पैसे अलग रखे थे, लेकिन किसी से भी कहीं भी गलती हुई हो, जो भी कुछ पैसे कम आए हैं, देख लीजिएगा कि आपने पूरे दिए या नहीं दिए, वो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी फोटो आ चुके हैं, ले लीजिएगा अपना, जिन्होंने नाम कल लिखाया था, परसों नहीं। दीदी 1 बजे से पहले हमें सूचना देनी है जिनको चाहिए, इसलिए क्लास के बाद हो नहीं सकता। मैं और रॉबिन बहन पीछे बैठते हैं, जिनको लेनी है वो ले लेगा।
ओम शांति। बोलो सभी। विषय इतना सुंदर है कि हर ब्राह्मण आत्मा की जीवन से, धड़कन से और उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। जो विषय दिया है उसमें 3 सह हैं, एक संगम, दूसरा समय और तीसरा श्वास। इसको सार्थक करने के लिए 2 सह और जोड़ने हैं, वो है समर्थ और सफल। अगर संगम युग मेरा समर्थ और सफल हो जाए, तो समय भी समर्थ और सफल होगा और श्वास भी समर्थ और सफल हो जाएगा। आज अमृत वेले मन के अंदर खुशी की लहरें दौड़ रही थीं आप सबको देखकर, कि करुणा निधि दया सिंधु प्यारे बाबा ने हम सबको, आप सबको खजांची बनाया है अपने खजानों का, ऐसा ही है। परम धाम छोड़ के सृष्टि पर भगवान आया और किसको ढूंढा? मुझे ढूंढा, हम सबको ढूंढा। उसी बल, उसी भरोसे, उसी निश्चय, उसी विश्वास से हम यहां एकत्रित हैं। संगम युग कब हुआ? जब बाबा ने मुझे चुना और मैंने बाबा को चुना, तो जीवन में क्या हो गया? संगम हो गया। संगम माना, अभी आपने देखा भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार कुंभ का मेला संगम हुआ था, जिसे प्यारे बाबा कहते कि मेरे बच्चों के कुंभ के मेले को और इस संगम त्रिवेणी धारा को कोई दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन हम बच्चे बोलो डूब रहे हैं, खो रहे हैं, समा रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। बट्टी माना, उसकी अनंत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बोलो फैल रही हैं। मुझ आत्मा का मिलन कॉन्स्टेंट उस प्यारे प्रभु के साथ हो रहा है। संगम युग का महत्व कितना जबरदस्त है, जिसे सर्व शास्त्रों में श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता गा रही है, सारा संसार गा रहा है। आएगा, मिलेगा, मनोकामना पूर्ण करेगा, और हम बच्चों की मिल गया, पाना था सो पा लिया, पाने का ना कुछ रहा। वो पुकार रहे हैं, हम पी रहे हैं। उस प्रभु मिलन को, ईश मिलन को, वो कहते हैं शीश कटे प्रभु मिले तो सस्ता जान, और मैं कहती हूं बस ये मैं और मेरा छूट जाए तो मैं और मेरा बाबा रह जाए और संगम के सर्व आनंद बोलो भरपूर हो जाए। जब संगम की बात आती है, गला भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कितनी बड़ी अपनेपन का अधिकार मुझे इस परमात्मा पिता ने दिया, जिसे हजारों वर्ष हम कहते रहे तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, वो इस संगम युग में आके मुझे माता पिता का प्यार दे रहा है, पालना दे रहा है, प्राप्तियां करा रहा है, इनहेरिटेंस दे रहा है, बपोती दे रहा है। बपोती माना वर्षा, विरासत। परम पिता परमात्मा की संगम युग पर मुझ आत्मा के लिए क्या विरासत है? इटर्नल पीस। बातें अनेक हैं, बाप एक है, वो मेरे खातिर आया है, मुझे वर्षा देने आया है, संगम हुआ है मेरा उससे, उसका मुझसे। मैं किसी मायने में चूक कर सकती हूं, पर मेरा सर्वप्रिय प्राण आधार संपूर्ण कल्याणकारी वो कहीं चूक नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मुझे मिला है, उसका मुझसे प्यार है, उससे उसका मेरे से अपनापन है। वो मुझे हर तरह से अंग अंग, रोम रोम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनेट और आउटर, दोनों को शांति से, शक्ति से, आनंद से, खुशी से भरपूर कर रहा है। बोलो कर रहा है नहीं कर रहा है? पीछे से आवाज नहीं आ रही है ना? कोई भी मेरे साथ अनजस्टिस कर सकता है, मैं स्वयं स्वयं के साथ अन्याय कर सकती हूं, लेकिन बाबा बोलो सोचने से पहले हाजिर, बोलने से पहले उत्तर, और मेरी सामर्थ्य में कहीं कमी देखता है तो खुद आकर के उस कार्य को बोलो कर लेते। ये है संगम। जिस संगम की यादगार कुंभ मेले में लोग स्नान करके क्या कहते हैं, हम पावन हो गए, हम पवित्र हो गए, वो हम बच्चों का ही यादगार है। यदि मेरे पास संगम के परम पिता परमात्मा का ये शांति का वर्षा है, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, शांति मुझ आत्मा का गुण है, शांति का सागर मेरा पिता है, शांति धाम मेरा देश है, अगर मैंने उस शांति के गुण को अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने भाव स्वभाव से, अपने संस्कार से, अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं बनाया तो मैंने संगम को पाके क्या किया। मैं पूछूं अपने से, क्रिएट करूं। बाबा ने तो खजानों की खान खोली है, संगम माने खजानों की खान का पॉइंट। एक अटेंशन हजारों विरासत, एक संकल्प में बाबा के साथ जुड़ती हूं और बाबा मुझे हजारों पद्मों गुणा प्यार शक्ति सर्वस्व देता है, उसका नाम है संगम। आप सब मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, ज्यादा मनन चिंतन करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए, प्यारे बाबा ने इस संगम के अनोखे समय पर आपको कौन कौन से खजाने दिए हैं? इसी महा की मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में बाबा ने कई बार, इससे पिछले महीने में बाबा ने कई बार हमारा खजानों पर अटेंशन खींचवाया है। आपने भी प्रोग्राम देखा होगा, खजाने की संगम की बात आई होगी तो दिमाग में वो स्मृतियां आई होंगी, कितने खजाने। लेकिन उन सब खजानों के लोकर तक पहुंचने के लिए मुझे ये दो खजानों पर ध्यान केंद्रित करना है। संगम का समय सुहाना है, इसमें परमात्मा से सर्व संबंधों की रसना मिलती है, सर्व खुशियां मिलती हैं। प्यारे बाबा ने मेरे लिए सब कुछ कलयुग और सतयुग से अलग स्थापित किया है। ये ईश्वरीय परिवार सतयुग में मिलेगा? बोलो, सतयुग में मिलेगा ईश्वरीय परिवार? बोलो, जो कहते मिलेगा वो हाथ उठाओ। नहीं मिलेगा। सतयुग में बाबा मिलेगा? बोलो, सतयुग में ये यूनिवर्सिटी मिलेगी? कलयुग में ये सब ज्ञान था हमारे पास जो अब है? न कलयुग में ये चीजें हैं, न सतयुग में ये चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा ने मेरे खातिर संगम युग पर आकर, संगम युग को स्थापित करके मुझे आत्मा का कल्याण करने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए इस संगम युग की स्थापना की। और मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, आप सब वो भाग्यशाली आत्मा हैं जिन्होंने इस संगम युग को समझा है, महत्व को जाना है और जीवन को जी रहे हैं। जिससे हम क्या महसूस करते कि हमारा समय सर्वश्रेष्ठ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशाएं, पोमेस्टी में कहते हैं कि जिस पर बृहस्पति की दशा हो उसके सर्व आनंद, नौ निधि, सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो बाबा मेरा माता पिता नहीं, शिक्षक बनकर भी मुझे जो शिक्षा देता है उससे मुझ आत्मा पर बृहस्पति की दशा बैठ गई। एक अजीब आनंद अनुभव हो रहा था आज के अमृत वेले के योग में कि कितने सारे बाबा के खजांची हैं, खजाने एक ने दिए हैं। गाया जन्म जन्मांतर है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन खजांची इतने सारे यहां बाबा के बैठे हुए हैं, लाखों खजांची बन गए हैं। बाबा खजांची 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 का खजाना लूट रहे हैं, ले रहे हैं। रोज सागर थालियां भर भर के मुरली के माध्यम से कितने रतन देता है खजाने। और रोज हम जब मुरली सुनते क्या कहते हैं, आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई। बोलो, है कोई दिन जिस दिन ये कहते हो मुरली में आज अच्छी बात नहीं थी? हर रोज यही आता है ना। लेकिन बाबा कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगता कि कल मैंने तुझे इतना खजाना दिया था, इसको तूने कितना मल्टीप्लाई किया। कहानियां तो हम बहुत सुनाते हैं कि एक सेठ जी ने अपनी तीन बहुओं को कुछ अनाज के दाने दिए, और कहा मैं वक्त पड़ने पर मांगूंगा, देना मुझे लौटा के। सबने संभाल के रखे, लेकिन कहां संभाल के रखने, ये तो उन्हें ज्ञान ही नहीं था। आप सबको याद है ये कहानी, कहां कहां रखे। ठीक इस प्रकार से प्यारे बाबा ने मुझे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, दिव्य गुण और शक्तियों का खजाना, अनेक खजाने दिए हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि खजाना है समय का खजाना। संगम भी अपने आप में समय, सर्वश्रेष्ठ समय, लेकिन संगम के समय में मैं अपने समय को सफल और सार्थक करूं, इसको जानना। प्यारे बाबा को पिता समझकर गुरु नहीं समझ लेना। जब हिसाब लेगा तो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का लेगा। हजारों वर्ष हमने गाया, तन मन धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। जब तो अनजान थे, नादान थे, अबोध थे, ना समझ थे, लेकिन संगम युग पर आकर के मुझे तन को अर्पित करना, मन को अर्पित करना, धन को अर्पित करना, समय श्वास को अर्पित करके चलना सिखा दिया बाबा ने। ब्राह्मण माना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाला। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का लौकिक व्यक्तित्व क्या था, चाहे सामाजिक स्तर से देखो, चाहे धार्मिक स्तर से देखो, चाहे पारिवारिक मूल्यों के स्तर से देखो, चाहे उनकी पर्सनैलिटी के स्तर से देखो, चाहे और उनकी ख्याति और प्रसिद्धि और उनके व्यवहार से देखो, उन जैसा संसार में पूरे कालचक्र में दूसरी कोई पर्सनैलिटी नहीं आती। टिप्स पे एक ओनली वन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर पिता श्री ब्रह्मा बाबा। जब उनको ये ज्ञान मिला, जब उन्हें ये बोध हुआ संगम है और समय कौन सा है, सब चीजों को बाइंड अप करना बाबा को कितना टाइम लगा। महिमा बहन कितना टाइम लगा, सेकेंड में जीवन मुक्ति। और वो उसकी सेकेंड की जीवन मुक्ति हम सब ब्राह्मणों के लिए रोल मॉडल बन गया। हम सब कहते हैं मुझे बाबा से सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली। बाबा ने तो दे दी, लेकिन मैंने अपने समय से उस मुक्ति का कितना अनुभव मैंने लिया। मेरा समय कहां जा रहा है, पूछिए उस धावक से समय की वैल्यू जो चार कदम पीछे रहकर 200 मीटर की दौड़ में दूसरे स्थान पर होता है। देखिए उस धावक को जो दो कदम की दूरी पर आधी सेकंड से भी कम समय में तीसरे नंबर पर रह जाता है। समय बलवान है, समय महान है, समय मूल्यवान है। समय जब हमारे पुरुषार्थ से जुड़ जाता है तो हमें अनमोल और बहुमूल्य बना देता है। जब ये महत्व हमें समय का हो तो ना हम अलबेले होंगे, ना हमें व्यर्थ चलेगा, क्योंकि सारा समय मेरे पास मेरा नहीं है, किसका है बोलो बोलो। जब मैं इसे यूज कर रही होती हूं, क्या मेरे अटेंशन पर होता है बोलो। चाहे वो समय मैं अपना दैनिक दिनचर्या पे यूज करूं, चाहे मैं आपसी संबंधों में यूज करूं, चाहे मैं आपसी व्यवहार में यूज करूं, चाहे मैं आपस में लेन देन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या किसी में भी यूज करूं समय को, जब मैं समय को खर्च कर रही होती हूं तो क्या मुझे ध्यान रहता है कि मैं जो समय यूज कर रही हूं वो मेरा नहीं, मेरे बाबा का दिया हुआ है। उदाहरण के रूप में भाई तो बड़ी अच्छी रीति समझेंगे इस चीज को, और जो बहनें हमारी कार्यक्षेत्र पर हैं वो भी समझेंगी। कहते बहन जी आजकल दफ्तरों में ना कैमरे लग गए हैं। पहले हम अपने जब कैमरा नहीं था तो ऑफिस में कुछ होमवर्क कर लेते थे, कुछ पढ़ लेते थे, कुछ सुन लेते थे, लेकिन आजकल कैमरा लगा होने के कारण हम ऑफिस वर्क के अलावा दूसरा कार्य ऑफिस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉस के पास हमारे सारे रूम्स के कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा ही है ना आजकल ऑफिस में सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ना सब अपडेट, किसी से भी कोई छुपा हुआ कुछ नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी से वो मानते हैं। सर्विसेज है तो आप देखिए फिर हम कितने अलर्ट रहते हैं ना। अगर मेरे दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि में ये सेट हो जाए कि मैं बाबा के कैमरे में हूं, ये समय मेरा नहीं है, किसका है, और बाबा ने किस लिए मुझे दिया है ये समय, किस लिए दिया है भैया जी, पावन बनने के लिए, श्वासों को सफल करने के लिए, बाबा के साथ बात करने के लिए। सफल कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा ना सफल, बाबा मुझे देख रहा है, निहार रहा है। खुदा का खत पढ़ा है आप में से किसी ने, पढ़ा है, क्या कहता है वो खत, बाबा देख रहा है बच्चा क्या कर रहा है, बाबा खड़ा है पीछे और बच्चा चाय पी रहा है, बाबा को भोग ही नहीं लगा रहा। सुबह अमृत वेले से लेके शाम तक बाबा को वो समझाता रहता, बस ये कर लूं, बस ये कर लूं, बस ये कर लूं, बस ये कर लूं, और रात को हार के थक के। समय किसका है बहनों भाइयों, समय मेरा नहीं है, मेरे परिवार का नहीं है। संगम युग माना सबसे पहले बाबा, बाबा ने बाबा को ही देखा। नारायण दादा कितनी आयु के थे उस समय जब बाबा ने यज्ञ निर्मित किया, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की स्थापना रखी, रजिस्टर्ड बॉडी बनाई, 8 दीदियों को लेकर के उनके सर पर ज्ञान का कलश रखा। जब उनका छोटा पुत्र कितने वर्ष का था बिंदु दीदी, सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष का। हमारा तो किसी का भी इतना छोटा बालक नहीं है, फिर कहां रुके हुए हैं, कौन सी इंतजार में है हम, कैसे बाबा ने सारा बाइंड अप किया, और एक बाबा दूसरा ना कोई, सब कुछ माताओं कन्याओं के सर पर रखकर ट्रस्ट बनाकर उससे भी अलग हो गया, त्याग का भी त्याग, सिर्फ और सिर्फ पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है। इस श्वास और समय को सतो प्रधान बनाने की धुन में लगा दिया। हमारी विश्व वंदनीय आदरणीय दादियों ने क्या किया, अगली दिवाली नहीं आएगी, सुनाए दादियों के मुख से, ये समय का बोध उनकी 13 वर्ष की छोटी आयु, आदरणीय गुलजार दादी 9 वर्ष के, रतन मोहिनी दादी जी उनसे भी छोटे, अगली दिवाली नहीं आई। इस समय की स्मृति ने दादियों को दादियां बना दिया बालिकाओं से। मैं कई बार इस बात को दोहराती हूं, जब भी मुझे आप ब्राह्मणों के बीच में बैठने का बात करने का अवसर मिलता है, कि एक बार वरिष्ठ बहनों की ऐसी चिटचैट चल रही थी, आदरणीय दादी जी गीता पाठशाला चलाया करते थे रात के 10 बजे, उसमें चिटचैट चल रही थी, तो चिट चैट चलते चलते ये विचार चला कि रतन मोहिनी दादी जी इतने छोटे थे तो पूछेंगे उनसे चल के कि आप उस समय कौन सी तपस्या करते थे, कौन से खेल खेलते थे, आपका दिन का समय कैसे व्यतीत होता था। जिज्ञासा हुई है क्योंकि अन्य दादियां तो उनसे बड़े थे। अगले दिन सबने दादी जी से टाइम लिया और मिलने गए। तो जब मिलने गए तो दादी जी ने यही बताया कि मम्मा और बाबा हमें ये ट्रेनिंग देते थे कि जब आपस में एक दूसरे से बच्चे बच्चे मिलो ना तो भ्रकुटी के बीच में आत्मा देखना। कौन सा खेल था? आत्मवृत्ति आत्मदृष्टि का, और अपनी आत्मा उनको दिखाना। अब ये कब हो सकता है? जब इतना लंबा अभ्यास हो। लंबा अभ्यास माना समय, लंबे समय तक उस चीज का हमने अभ्यास किया हो, जिसका ही परिणाम था कि किसी भी दादी जी के पास हम लोग जाते थे तो दादियों के ओरे के पास जाना है, दादियों के पास ये स्मृति ही एक सिहरन, एक हल्कापन दे देती थी, खुशी अंदर की। और जब उनके ओरे के नजदीक पहुंचते थे तो बॉडी से डिटैच। बोलो जिसने ये दादियों से अनुभव किया है, किया है ना? कारण लंबे समय का बाबा और बाबा को फॉलो करना। हम लेट आए हैं, हम लास्ट में आए हैं, तो हमें भी बाबा ने एडवांस में विरासत दी हुई है, वरदान दिया हुआ है कि जो आदि में हुआ है ना वो अंत में होना है। होना है तो मेरा रिसीवर तो सेट करना पड़ेगा ना। पीस ऑफ माइंड का चैनल देखना है तो रिसीवर, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी ना। तो मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट वो समय पर मुझे अपने को देना होगा। मैं बाबा को याद करती नहीं हूं, बाबा मुझे याद करता है। मैं अपने समय को ऐसे यूज करूं, बाबा का समय बाबा को देके चलूं, जो बाबा मुझे समय दे। ये मेरी विशेष बच्ची, ये मेरा विशेष बच्चा है। हम इधर देखेंगे तो इधर देखना तो शंभू भाई को चाहते हैं, लेकिन सुमित भाई भी दिखेगा जरूर इधर देखने में। दिखेगा नहीं दिखेगा? ऐसी बाबा किसी और को दृष्टि दे नहीं, मेरा ध्यान मेरा अटेंशन पूरा समय बाबा की ओर ऐसा रहे जैसे बाबा मुझे देख रहा है और मैं बाबा के कैमरे में कैद हूं। वो तभी होगा जब मेरी वृत्ति, जब मेरी दृष्टि, जब मेरी कृति, जब मेरी स्मृति, जब मेरा बोल इस बात का अटेंशन रखेगा कि ये संगम युग बाबा ने मेरे लिए लाया है, बाबा मेरा है। बाबा घड़ी घड़ी हमें कहते हैं कि समय का सफल करो। सफल माना श्रीमत प्रमाण यूज, सफल माना मर्यादा पूर्वक चलना। तुरंत फल तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन दाल का पका हुआ फल, खेत में पड़ा हुआ बीज, वर्ष भर पड़ी हुई पढ़ाई जो परिणाम देती है तो समय पर देती है। और समय को जिसने हर रोज सफल किया होगा, पलेवे के टाइम पलेवा किया, जोत के टाइम जोत लगाई, बोने के टाइम बोया, टाइम है ना हर जगह, टाइम है ना हर जगह। आज 9:25 पे मुझे ऑफिस में जाना है, 9:30 मना मेरी अटेंडेंस, मार्जिन। टाइम रेगुलरिटी देता है, टाइम पंचुअलिटी देता है, टाइम सिंसियरिटी देता है। जो टाइम की वैल्यू करता है, टाइम उसकी वैल्यू करता है। हमारे प्यारे बाबा ने हमारी इतनी गुही गहन पराविद्या को चित्रों के माध्यम से दिया। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में आत्मा का शब्द कहीं कहीं छिटक मिल जाता है, लेकिन बाबा ने टू द पॉइंट सब्जेक्ट मास्टरी, भगवान ज्ञान का सागर है, इसे कैसे हम प्रमाणित करें? टू द पॉइंट, हर सब्जेक्ट की इतनी गुह्यता, इतनी सूक्ष्मता, इतनी व्यवहारिकता, इतना लॉजिक, इतना साइंटिफिक दिया है, जिसको अकाट्य ज्ञान कहा जाता है। इसलिए हम उसे ज्ञान का सागर मानते हैं, कहते नहीं है, मानते हैं। और वो मानना तभी सार्थक होगा जब मैं स्वयं उसको अप्लाई करूं समय पर। बाबा कहते आवश्यकता है समाने की शक्ति, और मैं यूज कर रही हूं सहन शक्ति। क्या होगा समय पर? दोनों शक्ति हैं, दोनों की आवश्यकता है, लेकिन समय पर दोनों का महत्व है। मैं अपना समय भी सफल करूं और अन्य आत्माओं का भी सफल करूं, तब ही मैं विश्व कल्याणकारी बनकर समय का खाता जमा कर सकती हूं। एट ए टाइम दो काम मेरे बाबा ने मुझे दिए। जो आदर्श माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों में, बच्चों के व्यक्तित्व में नेतृत्व निखारने के लिए वो डबल पैरल चलाते हैं, पढ़ो और पढ़ाओ, बनो और बनाओ। तो मेरा बाबा मुझे स्टूडेंट स्टडीज लाइफ में ही टीचर भी बनाता है कि खुद को टीच करो बैठ के। मुरली तो बहुत अच्छी थी, पर मैंने अपने मन को समझाया, मुरली को अपने मन को पर समय मुरली का दिया। हे मन, आज बाबा ने कहा है, हे मन, तुम समय के अनुसार इसमें विचारों की प्रोडक्टिविटी दो मुझे। ये मन तो मास्टर समुद्र है, जन्म जन्मांतर के संकल्पों की उत्पत्ति पल पल इसके अंदर होती रहती है। उसको मैं इस समय पर यूज करने वाला बाबा की श्रीमत, जब से मुझे आया हूं बाबा का बच्चा, चाहे 10 महीने का है, चाहे 10 वर्ष का है, चाहे 50 वर्ष का है, अखुट ज्ञान का खजाना उसके मन के अंदर बाबा ने बोलो भरा हुआ है। जब कभी किसी को ज्ञान सुनाने कोई भी कहे मुझे नहीं आता, लेकिन वो लग पड़ता है, बाबा कहते अनुभव सुनाना तो सबको आता है, टॉपिक सुनाना नहीं आता तो क्या है। और फिर कहते पता नहीं बाबा ने कहां कहां से क्या क्या दिलवा दिया। वो सुनने वाला खुश हो ना हो, हम सुनाने वाले खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि क्या दिया था आपने? जो बाबा ने आपको दिया था वो अनुभव आपने दूसरी आत्माओं को बांटा, तो आपकी खुशी जीव जीव खर्चे त्यू त्यू बढ़े, बिन खर्चे घट जाते, खजाना बढ़ गया। खजाना बढ़ते बढ़ते क्या होता है? जब मेरा खर्चा 50 और आमदनी 100-200 की होने लगे तो जमा ही होगा ना। अभी हमारा समय कौन से संकल्पों में जाता है? कल परसों भी बाबा ने कहा मुझे ठीक होना है, मुझे टीच होना है, मुझे ना किसी को टीच करना है ना मुझे किसी को ठीक करना है, मुझे खुद पढ़ना है। वायदा किससे? जब भगवान से मिलने की बात आती है तो क्या कहते हैं? सबको मिल जाए भगवान या मुझे मिल जाए भगवान? बोलो, पहले तो यही कहते हैं बाबा भगवान मुझे मिल जाए, लेकिन ये तो बाबा ने कला सिखाई है। वहां तो मंत्र भी मिलता था तो चुपचाप, एक सदस्य को एक मंत्र, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। यहां हमें बाबा ने संगम युग के समय पर समझाया कि तुम बांटो और बढ़ाओ, और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाओ, पहले लेने में जमा करो, फिर बांटने में जमा करो, और लीकेज को बंद करो। लीकेज क्या है हमारे समय को व्यर्थ करने वाली? 4 प्रकार से हमारा समय सफल करने के लिए हमें चाक चौबंद होना पड़ेगा। पहले तो हम कर्म कर लेते हैं, फिर सोचते हैं करने के बाद, सोचने के बाद फिर उस पर पश्चाताप करते हैं तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर उसे ठीक करने की कोशिशें करते हैं। एट ए टाइम एक कर्म को चार टाइम हम करते हैं तो हमारा चार गुना खर्चा समय का बढ़ जाता है। अब बाबा ने चारों टाइम के खर्चे को एक टाइम करना सिखाया है कि कर्म के परिणाम को करने से पहले सोचो। जीप तो निकल के चली जाएगी बाहर, लेकिन तबला यहां बजेगा। एक शब्द, एक बोल, जैसे को तैसा ही बोला आपने, कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन सामने से जो बमबारी होगी उसका सामना कौन करेगा, कौन समय देगा उसको। इसलिए एक चुप सो सुख, पर रहा जाए तब रहने की विधि क्या है। ये समय बाबा का है, बाबा ने मुझे समय दिया है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को किसने क्या नहीं बोला था, द लाइट फिल्म किस किसने देखी, भाग्य विधाता फिल्म किस किसने देखी, देखी। चलो हमने जीवन कहानी का पहला भाग नहीं पढ़ा, काश कि आप यहां आए, कुछ साहित्य जरूर खरीद के लेके जाना। बाबा की जीवन कहानी के दोनों भाग लेके जाओ, इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा की पुस्तक लेके जाओ, हमारे चंद्रहास दादा, आदरणीय विश्व रतन दादाजी जगदीश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की पुस्तक, ये पुस्तकें खरीद के लेके जाओ, क्योंकि अंत में ये डेटा नहीं रहेगा, अंत में ये यूट्यूब और ये सब नहीं रहेंगे। उस समय ये पुस्तकें और पुस्तकों से अर्जित, पुस्तकों पर व्यय किया हुआ समय जो मेरी शक्ति बना होगा वही मेरे काम आएगा। अब पढ़िए उनमें, द लाइट फिल्म में और द भाग्य विधाता फिल्म में आप देखिए पिताश्री ब्रह्मा बाबा के सामने कौन कौन सी बातें और कौन कौन से घटनाएं और कौन कौन से परिस्थितियां नहीं आई, लेकिन बाबा ने बाबा को समय देने के बाद एक पल, एक सेकंड अपने पर खर्च, बोलो तो जमा 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 होता गया। एक बाबा थ्योरी देता है, दूसरा बाबा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तीसरी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती और हमारी ये दादियां खुली वेदों की ऋचाओं की बातें हमें वेद मंत्र बन के जीवन जी के दिखा रही हैं। किसी भी दादी का कहीं से भी आप पन्ना जीवन का खोल के देख लीजिए, उन्होंने अपने समय के पल पल को कैसे सफल किया। सब बाबा के बच्चे, बोलो हमारा समय कहां जाता है। संगठन में आते हैं हम तो हम संगठन में आके खुश होते हैं, कहीं एक दूसरे दुनिया के अंदर एक भी बहन भाई अपना मिल जाए, सारी थकान दूर हो जाती है उन्हें देखते ही, बाबा का बच्चा है, बैच लगा है बस, कैसा है ये नहीं पता, लेकिन बैच लगा दिख गया, वाह रिलैक्स हो गए, बाबा का बच्चा मिल गया। और जब संगठन में आते हैं, एक साथ इतने इकट्ठे होते हैं, तो कितना हमारा खुशी और आनंद बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ समय हमारा ऐसी बातों में चला जाता है जो संगठन के बल को और संगठन के समय को दिव्य, श्रेष्ठ, समर्थ और सफल बना नहीं पाते। कैसे, कहते जी आंख है दिख रहा है तो कैसे कहें, लेकिन एक अंदर की आंख भी तो फिट हो गई ना हमारे, बोलो अंदर की आंख फिट है या नहीं। जैसे बाहर का चश्मा हमें दिखाने में, देखने में मदद करता है, ऐसे अंदर के चश्मे को भी तो यूज करो। दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम सुन रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन क्या मेरा इससे समय सफल होगा, बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत बड़ा वरदान दिया है कि तुम मेरे VVIP बच्चे हो। तो VIP का समय कैसे मैनेज होता है? सेकंड सेकंड मैनेज होता है ना, प्रोटोकॉल होता है ना। तो हम VIP बच्चे हैं, हमारे दर्शन पल भर के, पलक झपकते के दर्शन हम इष्ट देव देवियों के, भगत करोड़ों पद्मों लोग मांग रहे हैं, तो मैं समय का क्या कर रही हूं? मैं होवनहार दर्शनीय मूरत देवी देवता, मेरे बाबा ने सर्वशक्तिवान ने वो बनाने के लिए यूनिवर्सिटी खोली, वो सृष्टि पर आया, ये सारा सिस्टम उसने बना के दिया, सारी शक्तियां गुण और वरदान मुझ पर बरसाए, और मैंने क्या किया? वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये करती है, ये वो करता है, इसने उसके साथ ये किया, इसने उसके साथ वो किया। मुझे तो धर्मराज बनाया नहीं किसी ने, मैं क्यों बनी धर्मराज? सारा समय किस में जाता है? एक उदाहरण में बहुत सुंदर मुझे बाबा ने ही टच कराया। कई बार घर में कई विकलांग होते हैं, जन्म से मानसिक विकलांग होते हैं, शारीरिक विकलांग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनको क्या करते हैं परिवार वाले? बोलो क्या करते हैं? उसे फैमिली से बहिष्कार कर देते हैं या अपनी फैमिली की ग्रोथ को उसके कारण रोक देते हैं? बोलो। उसको संभालते पालते हुए भी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हुए भी, वो समय को सफल, बोलो, करते अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, समाज में अपना स्थान, अब उस कमी को पूर्ति स्वयं डबल करके उसको फिलअप करते। क्या प्यारे बाबा ने हमें ये, जो वो लौकिक में हो रहा है, उस पारलौकिक उस अलौकिक माता पिता ने ये समझ हमें नहीं दी? पिता श्री ब्रह्मा बाबा के एक नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे हैं। जब हम दादी दीदियों के या साहित्य के नजदीक आते हैं तो पता चलता है कि कैसे बाबा ने एक एक आत्मा को मंजिल पर पहुंचाया। और ध्यान देने की बात यह है कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अन्य आत्माओं को मंजिल पर पहुंचाने के लिए खुद कहीं नहीं रुके, एक सेकंड और एक मिनट। चरेवेती चलते गए। खुद उन्होंने मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, खुद उन्होंने पल पल में अतीन्द्रिय सुख को भरा और सब बच्चों को निश्चिंत। और आज हमारे सामने कोई परीक्षा आती है, बाबा को नोटिस आ रहा है, वारंट आ रहा है, और बाबा निश्चिंत है, और बाबा आराम से कह रहा है, बाबा बैठा है। मैं मुझ बाबा ने नहीं कहा, वो आया था बाबा, वो कह के गया, तो वो कहते हैं उस बाबा को कह दो, वो नहीं कहे ऐसे शब्द। ये है समय का सदुपयोग, ये है समय को मल्टीप्लाई करना। समय बलवान है, लेकिन बलवान किसके लिए? समय अवसर देता है, समय अपॉर्चुनिटी देता है, समय हमें वैजयंती माला पहनाता है, बशर्ते ये दो बातों का जो कंट्रोल कर लेता है। कौन क्या कर रहा है, मुझे इसे ठीक करना है। मैं कोई भी सामने दृश्य दिखाई दे रहा है चर्म चक्षुओं से अंतर चक्षु में ले जाके देखो, ये मेरे अंदर तो नहीं है। और बाबा ने दूसरी विधि क्या दी है? उस समय उस आत्मा के ऊपर दया करो, रहम करो। इसका एक और उदाहरण है, छोटा बच्चा देखा है आप लोगों ने, 8, 9, 10, 11, 12 महीने का, ठीक है? तो छोटा बच्चे को माँ खिलाती है गोदी में, और बच्चा क्या करता है? माँ की बिंदी उतारता है, माँ की जंजीर तोड़ता है। किस किस माँ ने करवाया ये काम? माँ का कान भी खींचता है, बाल भी नोच लेता है, बोलो, सबने कराया, सब अनुभवी है ना। पिता घोड़े बने, कंधों पे चढ़ा के अपने से ऊंचा बनाया, कभी आपने उस बच्चे को प्रतिकार किया? कभी आपने उसको टाइट पकड़ा? कभी आपने अपना चेहरा बदला उसके लिए? आप उसे हवा में उछालते और खुश होते हो, अरे वाह मेरा हुआ तो नोचने वाला, नहीं तो मुझे माँ कौन कहता, मुझे बाप कौन कहता। अगर आज कोई मेरे से दुर्व्यवहार कर रहा है जिसमें मैं अपने समय को खत्म करती हूँ, मेरे से बुरे बोल बोल रहा है, बुरा आचरण कर रहा है, या मेरे अंदर अशोभनीय चर्चाओं को बढ़ावा दे रहा है, इन्हीं में तो हमारा समय जाता है, इन्हीं में तो हम चीटिंग और अपने आप को हीटेड फील करते हैं। लेकिन आज मेरी चर्चा कर तो रहा है, वो रहम का पात्र है, उसे हलवा बनाना नहीं आ रहा, बेचारा लापसी तो गोल ही रहा है, तो मैं उसके प्रति भी शुभ भावना रखूं। जब बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो लगती तो बड़ी कड़वी है, लेकिन जब उसे अप्लाई करते हैं धीरज, जैसे बाबा का धीरज 90 वर्षों तक पका नहीं है, 90 वर्ष पहले भी मीठे बच्चे बोला था और आज भी मुझे मीठे बच्चे कह रहा है, 90 वर्ष पहले भी बाबा ने मुझ में वही विश्वास और वही अरमान रखा था और आज 90 वर्ष के बाद भी मेरे प्रति उसका वही आस्था विश्वास और वही धैर्य है, कारण उसकी कृपा और रहम दृष्टि को मैं चाहता हूं और वो दे रहा है मुझे निरंतर। तो जो मुझे मिला है वो मुझे औरों को भी तो बोलो बोलो देना चाहिए, देना पड़ेगा या देना ही है, तो समय क्या होगा, समर्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उससे जो एक्सपीरियंस मुझे मिलेंगे ना, और उससे जो मुझे बाबा की समीपता और पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पासपोर्ट मिलेगा, उससे बढ़ के मेरे लिए कुछ दूसरा बोलो नहीं। अब बात आती है श्वास की, जिसने समय सफल कर लिया उसे श्वास सफल करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्वास खजाना है, कौन सा खजाना है, अनमोल खजाना है, जिसका श्वास रुक जाता है उससे पूछिए श्वास का मूल्य क्या है। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या कहते, एक बार तो आंख खोल के देख लो, एक बार तो आवाज सुन लो, कौन सुनता था, कौन बोलता था, कौन देखता था, वो श्वास जो चल रहा था वही तो था। बाबा ने आज भी कहा, बाबा की याद माना, ये टेप, ये रेड बत्ती, ये कमेंट्री मिलेंगी हमें, बोलो फिर से हमें लौटना होगा, छोटा अंगुष्ठाकार आत्मा और बड़ा अंगुष्ठाकार परमात्मा, वो अंदर के संकल्पों की थॉट लेबोरेटरी को मुझे वेरीफाई करना होगा, प्यूरिफाई करना होगा। जैसे किसी वीआईपी को भोजन बिना टेस्ट किए हुए नहीं खिलाया जाता, चेक होता है ना वीआईपी का भोजन, ठीक इस प्रकार मुझ देव आत्मा, मुझ दर्शनी मूरत आत्मा, मुझ परमात्मा का राइट हैंड आत्मा, मुझ परमात्मा का कॉम्बाइंड स्वरूप शिव शक्ति आत्मा, मुझ परमात्मा के महावीर बच्चे का भोजन, ये सोच है वो कैसा, सोच की क्वालिटी कैसी, हद या बेहद, देह हद है आत्मा बेहद है, देह का संसार हद है आत्मा का संसार बेहद है। देह के नाते हम 10 जने का परिवार है, 100 जनों का परिवार है, और बेहद के नाते सारा विश्व अपना परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। तो बाबा मुझे संकल्पों से, हद के बंधन से निकाल बेहद में ले जाता है। हद में सब बंधन है, लिमिटेशंस हैं, इतने बजे यहां और उतना, और बेहद में अनलिमिटेड है, उड़ता जाऊं मस्त गगन में, पंछी बनूं, उड़ के बन चलूं मस्त गगन में, ये गगन भी छोटा और गगन, और भी छोटा और गगन, मुक्त होके उड़ रहे हैं, कारण आधार संकल्प, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जैसे ही शुद्ध आत्मा का संकल्प आया, कहां पहुंच गए, अकाल तख्त पर। परमधाम निवासियों कहां पहुंच गए, कौन सी शक्ति से जा रहे हो बोलो? संकल्प की शक्ति। दुनिया में तो कोई जानता ही नहीं है संकल्प की शक्ति कोई चीज है, ये संकल्प कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, ये तो हम बच्चों को सारा ज्ञान है। हमारे बाबा ने आकर हमें बताया कि ये साधारण संकल्प क्या है, व्यर्थ संकल्प क्या है, असमर्थ संकल्प क्या है, दीनहीन संकल्प क्या है, कमजोर संकल्प क्या है और शुद्ध संकल्प क्या है। जो हद से मुझे बेहद में ले जाए वो शुद्ध संकल्प है। जो इस दैहिक दुनिया से उस पारलौकिक दुनिया में ले जाए वो शुद्ध संकल्प है। जो संकल्प मेरी आत्मा की कॉन्शियस में टिका दे वो शुद्ध संकल्प है। पहले हम क्या कहते थे, मैं मूरख खलकामी कृपा करो भरता, कौन से संकल्प थे हमारे, ये संकल्प ही थे ना। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, मैं मास्टर सर्वर। और जैसे ही ये स्मृति आती है तो कांस्टेंट परमात्मा की शक्तियां हम पर बरसने लगती हैं, देह दुनिया दूर जाने लगती है, असमर्थता कमजोरी साधारणता बहुत दूर छूट जाती है, खेल लगने लगता है। संकल्प की शक्ति बहुत महान है, लेकिन इसकी बचत कैसे हो, इसको हम सब जानते हैं। जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं और बाबा की मुरली के संकल्प हमें मिलते हैं तो हमारा चित्त एकदम क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, सबके प्रति शुभ भावना से भर जाता है, सबका भला हो, सब सुख पाए, कोई नहीं पराया, ये जग अपना परिवार है, सदस्य हैं। अगर इस उंगली में चोट लगेगी तो ये सुखी रह लेगी, अगर इसमें लगी है थोड़ी सी लगी है तो इसमें कलाई में दर्द नहीं होगा, ये सारे ब्राह्मण हमारे कौन है। अगर इस बहन भाई में कोई मुझे कमी नजर आ रही है तो वो इसकी नहीं है, वो किसकी है, बस थोड़ा सा घुमाना है, कहीं बड़े होने के नाते कहीं छोटे होने के नाते मैंने ही कहीं अटेंशन में कमी छोड़ी है जिसका सामने मुझे ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ये सोच मेरे संकल्पों के प्यूरिफिकेशन को बढ़ा देता है। आज बाबा अपना तराजू उठा ले मेरे लिए, खुद मुझ आत्मा के लिए, तो मैं क्या पाऊंगी, 33 नंबर भी मुश्किल ही ले पाऊंगी। लेकिन चाहती क्या हूं मैं बाबा से, क्या चाहती हूं, बाबा आप मेरे हो ना, आप तो मुझे 100 में से 100 ही दोगे ना, फिर मैं मक्खन लगाऊंगी बाबा को। पर जब बाबा कह रहा है बच्चे कर्म के परिणाम को सोच के सोचो, फिर सोचो, क्या मैं जो कुछ सोच रहा हूं ये मेरे बाबा को पसंद है, जिसका मुझे प्रिय बनना होता है उसके लिए मैं सर्वस्व न्योछावर करता हूं, उसके अनुरूप चलता हूं, अनुरूप डलता हूं, तो मेरे बाबा को ये सोच पसंद है, ये बोल बाबा को पसंद है। आज तो विज्ञान ने भी घोषित कर दिया है कि जो हम सोचेंगे वो घूम कर लौट कर किसके पास आएगा, जो प्रतिध्वनि मेरे पास आती है तो मुझे कैसा लगता है। जब मैं ये सोचकर बोलती सोचती हूं तब मेरा मन कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मुझे अपने सोच में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मेरा सोच पीसफुल हो। दूसरा, सोच प्योर हो, तसल्ली से बैठ के सोचूं सारी वसुधा मेरा परिवार है तो सबके प्रति मेरे मन के भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा, मेरे भाव पवित्र हों, कैसे है ये मेरा परिवार, इटर्नल है, जन्म जन्म ये परिवार मिलने हैं, ये सदस्य मिलने हैं, एक जन्म नहीं, अविनाशी, एक पिता की संतान है हम, परम पवित्र परमात्मा की पवित्र स्वरूप आत्मा संतान है हम, वो पवित्र सोच। पावरफुल सोच, पावरफुल क्या हो, जो मुझे चाहिए वो सबको चाहिए। क्या चाहिए सबको? परमात्मा का प्यार चाहिए, परमात्मा से मुलाकात चाहिए, वो वातावरण, वो बोल मैं आपस में बोलूं जो इनका संबंध उससे ना टूटे, जुड़े, इनकी स्थिति बने। स्थिति बिगड़ने का काम सोच मैं इनको नहीं दूं। भले आज वो बात इन्हें अच्छी नहीं लग रही, जब इनकी स्थिति होगी तो जचेगी बात। जब मैं वो सोचूं और वो सोचवाऊं आत्माओं को जिसमें इनका कल्याण छुपा है, तो शांत, दूसरा प्योर, तीसरा पावरफुल, चौथा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। राजा की उंगली कटी, कल्याण, और मंत्री जेल में गया तो उससे बड़ा कल्याण। हर हाल में पॉजिटिव। आज मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा इसमें मेरा सेफ्टी है, कल्याण है। ये सोच मेरे रिलेशन को, मेरे कनेक्शन को, मेरे कम्युनिकेशन को, मेरे कनेक्शन को मजबूत करती है। और पांचवा है पर्पसफुल। पर्पस क्या है? सत्तो प्रधान बनना। पर्पस क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। ये सोच, पल पल मेरा सोच, क्या मैं न देवत्व की दिशा में बढ़ रहा हूं? वहां तो गाते रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ना धर्म मिला ना काम मिला ना मोक्ष मिला ना कुछ मिला, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति और मुक्ति का मार्ग दिया है, उस पर मैं कितनी सीढ़ी चढ़ती जा रही हूं, कितनी बाबा शब्द की लिफ्ट से यूज करते हुए मेरा सोच पर्पसफुल बनता जा रहा है। तब मैं कहूंगी मेरा खजाना संकल्पों का, बोलो, बचत हो रही है। जमा जभी तो होगा जब बचत होगी। तो जब बचत करने से पहले जमा करना है, और जमा करने से पहले खर्चों को कम करना है। कहां कहां खर्चे मेरे हो रहे हैं, कहां से लीकेज ज्यादा हो रहा है, कहां से मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तब कहेंगे वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह जीने की कला, सोचने का तरीका और समय को बलवान बनाने की शक्ति तूने मुझे दे दी। बीच में चित्र की बात आई थी, रह गई। समय का एक चित्र है, किसे मालूम है समय के चित्र का? सृष्टि चक्र नहीं, ये तो सृष्टि चक्र है, पर बचत और खपत से बचाने के लिए समय का चित्र है। भाइयों में गोविंद भाई, हाँ भैया बताओ, हाथ उठाया जिन, जी बैठ जाओ। समय का चित्र जो है, एक राजा ने चित्रकारों के लिए एक कंपटीशन निकाला और कहा जो समय का चित्र बना के देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो सब चित्रकारों ने चित्र बनाया, लेकिन किसी का प्रतियोगिता में नाम नहीं आ सका। लेकिन एक चित्रकार ने चित्र बनाया, वो चित्र क्या था? वो था आगे से समय का चित्र, समय के चित्र के अंदर यहां माथे पर बाल हैं और पीछे से क्या है, चिकना है, समझे? समय का चित्र चित्रकार ने कैसा बनाया कि यहां तो बाल है समय के और यहां से बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल जैसे लोटा होता है ना चिकना, ऐसे तो पूछा भाई क्या तात्पर्य है इस चित्र का? कहते समय वो शक्ति है कि अगर आपने इसे सामने से पकड़ लिया ना तो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। समय बीतने के बाद आप उसके पीछे भागेंगे ना तो दांत तोड़ देगा, पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए बहनों भाइयों, ये संगम का समय कितना शेष रहा है। संगम युग अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन छोटे में भी अब बिल्कुल 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 छोटा रह गया है। और होमवर्क का दर्पण बहुत बड़ा है, लिस्ट लंबी है। इस भट्टी का पूरा लाभ हम आगरा निवासी ले में और ये यहीं बाबा के रूम में पत्र लिख करके देके जाएं कि अब हमें संगम के खजाने को, समय और संकल्प के खजाने को, सर्व खजानों में से समय और संकल्प के खजानों को जो मुझे शक्तिशाली नहीं बनने दे रहे और जो मेरे बाबा को प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहे मुझे आत्मा से, इन दोनों को बचत करने का, जमा करने का, खपत का दरवाजा बंद करने का मैं संकल्प लेकर बोलो जाऊंगा। जो ऐसा संकल्प लेते हैं हाथ उठाओ कि आज से हम अपने समय और संकल्प को नष्ट नहीं करेंगे, बचत करेंगे, सफल करेंगे, समर्थ बनाएंगे और बाबा को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करेंगे। वो दो दो हाथ उठाओ। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार है आदरणीय कविता दीदी जी का। यूं कहें कि इस संपूर्ण भट्टी का जो हमारा लक्ष्य है, जो सार है, वो यही है कि हम अपने समय को सफल कर पाए। और दीदी जी ने बड़े सुंदर तरीके से और बड़ी गहराई से उस चीज को स्पष्ट किया कि ये समय चला गया तो कभी दोबारा नहीं आएगा। तो दीदी जी, समय के लिए, संकल्पों के इतने सुंदर स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। एक हाथ की ताली से हम दीदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। तो अपने लिए भी ताली बजा दो।